الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. آواز میں کوئی اگر ایشو ہو یا ہلکی آواز آ رہی ہو، کیونکہ ہم پہ ذرا ہیٹر چلایا ہوا ہے، تو بتا دیے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو سورۃ النمل کی تفسیر ہم اس والی کلاس میں پڑھتے ہیں. پیر والی کلاس، بدھ والی کلاس میں تو مثالی مرد کی کتاب چل رہی ہے، تو اس میں ہم نے یہ والی آیات پڑھ لی تھی، ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، یعنی آیت نمبر 45 سے 53، 45 سے 53 خلاصہ تفسیر بھی پڑھ لی تھی، اور معارف و مسائل آج پڑھنے تھے. تو اس میں حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے بہت ہی مختصر صرف 9 رحقن اس کی تشریح لکھی ہے. 9 جو ہے وہ 9 کے عدد کو کہتے ہیں، 9، اور رحت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قوم کا لفظ جو ہے وہ ایک جماعت کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح رحت کا لفظ بھی جو ہے نا وہ جماعت کے معنی میں آتا ہے. یہاں 9 اشخاص میں سے ہر شخص کو رحت کے لفظ سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور جاہ و حشم کے سبب قوم کے بڑے مانے جاتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ جماعتیں تھیں. ٹھیک ہے، تسعۃ رحطن یعنی 9 جماعتیں، تسعۃ رحطن 9 جماعتیں، تو 9 جماعتیں، حالانکہ لوگ تو اصل میں تو صرف 9 افراد تھے. ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح حضرت نے کری کہ گویا کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ ایک جماعت کی طرح تھا. ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں لوگ ایسے جن کے پیچھے جماعت لگی ہوتی ہے، تو ان کو بھی اسی طرح سے کہہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے 9 آدمیوں کو 9 جماعتیں فرمایا. یہ لوگ قوم صالح علیہ السلام کی بستی یعنی حجر کے بڑے مانے جاتے تھے. حجر ملک شام میں معروف مقام ہے. ٹھیک ہے، تو اب حضرت نے یہاں پہ جو لکھا ہے نا، حجر جو ہے وہ ملک شام میں ایک معروف مقام ہے، تو اس سے کوئی یہ کنفیوز نہ ہو کہ یہ جو حجر ہے یہ عربین پیننسولا سے باہر ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ عین ممکن ہے کہ یہاں پر کچھ غلطی ہو گئی ہو، یا یہ کہ حضرت کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو جارڈن کے اندر پیٹرا کا مقام ہے، وہاں پر بھی اسی قسم کے یعنی پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے جو گھر ہیں نا، پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر، جس طرح کہ یہ سعودی عرب کے اندر اس والے مقام پہ مدائن سالے میں نظر آتے ہیں، ویسی وہاں پر بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ممکن ہے کہ یہ سیولائزیشن جو تھی نا، جس کو نباچین غالباً کہتے ہیں، سیولائزیشن نباچین لوگ کہتے ہیں ان کو، تو یہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اٹ اسٹریچ آل دا وے فرام ہجر، جو کہ مدینہ منورہ سے کافی قریب جگہ ہے، وہاں سے لے کر کے جارڈن تک. ٹھیک ہے، اس زمانے کی جو سولائزیشن تھی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہوں گے، لیکن نہیں، یہ بہت سارے ذرائع سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے. ظاہر اگزیکٹلی تو نہیں پتا ساری پوری اتنی آرکیولوجیکل یعنی کوئی ایکسکیویشن وغیرہ اتنی زیادہ تفصیلی تو نہیں ہے سامنے، کہ جن کی بنیاد پر کنفرمیٹی کے ساتھ بولا جا سکے کہ کتنی ان کی جو ہے نا وہ ایکسپینس کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ قوم عاد علیہ السلام، سوری قوم ہود علیہ السلام، جو کہ قوم عاد کہلاتی ہے، یہ بھی کوئی چھوٹی سی جگہ پر نہیں تھی، بلکہ یہ پھیلی ہوئی تھی یمن سے لے کر کے، یمن کے بعد سے لے کر کے جو ہے نا وہ، یعنی بہت بڑا ایریا تھا یہ. ٹھیک ہے، اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک دلیل جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے، یعنی تھا تو وہ سرزمین عرب ہی، ठीक है ना, ये बात तो कंफर्म है कि वो सरजमीन अरब ही थी। ठीक है, अब सरजमीन अरब जो है वो उस जमाने में सरसब्ज थी, ठीक है ना, बहुत ही मतलब वहां पे यानी सब्जा था, बागात थे, खेत खलियान थे, और जो है ना वो यानी नहरें और दरिया, इस तरह का मामला था उस वक्त। ठीक है, अब ये जगह जो सारी की सारी इस वक्त हमें नजर आती है, ये सारी की सारी जो है ना वो रेत रेगिस्तान बन चुकी है, रेगिस्तान। ठीक है, अब ये रेगिस्तान जो बनी है ये कैसे बन गई रेगिस्तान? तो लगता ऐसा ही है कि ये कहीं से ये रेत अल्लाह ताला ने उड़ाई है हवा के जोर पे। ठीक है ना, हवा कौम आद को कैसे हला किया था? हवा के जोर से हला किया था, है ना, कि वो जो है वो इस तरह से जमीन पे पड़े हुए थे जैसे कि खजूर के तने पड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, यानी कितने लंबे चौड़े बड़े वो लोग थे, कौम अमालका, उस कौम के जो बची खुचे लोग रह गए थे वो कौम अमालका जाकर के बाद में बनी, जिसका जिसके साथ मूसा अलैहि सलाम का वास्ता पड़ा था। ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग थे, उनको हवा के जरिए से अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया था। तो हवा जब चलती है तो रेगिस्तान से फिर वो सैंड स्टॉर्म भी आता है, जैसे रियाज के अंदर जो लोग रहते हैं उनको वो सैंड स्टॉर्म्स का पता है कैसे जो है वो मिट्टी उड़ती है और मिट्टी आकर के डिपॉजिट होती है। ठीक है ना, तो उस वक्त इतनी तेज हवा चली थी कि जिससे कि इतनी ज्यादा मिट्टी आकर के जो है वो इस पूरे के पूरे नखलिस्तान के ऊपर जो है ना डिपॉजिट हो गई, और इतनी ज्यादा डिपॉजिट हो गई कि ये सारा का सारा जो ग्रीनरी थी ये सब का सब जो है वो उसके वजन के नीचे दब गया। और जब ये वजन के नीचे दब गया तो अब हजारों साल के अंदर जो है ना ये ग्रीन स्टफ जो था ये सारा का सारा फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया, है ना, ये एक 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 थ्योरी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जाहिर है इसके अंदर जो है वो एहतमाली दर्जे में ही बात की जाती है। तो ये फॉसिल फ्यूल क्या है? ये सारा का सारा ये तेल जो कि नीचे से नीचे मौजूद है, बहुत ज्यादा मौजूद है। ठीक है, तो बहरहाल पहले जो है ना ये ग्रीन मौजूद था। आज आप अगर चले जाएं म्यूजियम के अंदर ना, रियाज म्यूजियम में, तो वहां पर इन्होंने बाकायदा इसकी तस्वीरें बनाई हुई है, एन आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ हाउ द लैंड ऑफ अरेबिया यूज टू लुक लाइक इन द पास्ट। और हदीसे मुबारका से भी इसकी दलील मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के सरजमीन अरब फिर से लौट करके सरसब्ज ना हो जाए। लौट करके सरसब्ज ना हो जाए क्या मतलब? पहले भी सरसब्ज थी, और यही चीज जो है वो ये म्यूजियम वाले भी यही चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी एरिया के ऊपर ये चीजें फैली हुई थी। उसी तरीके से ये जो कौमे साले अलैहि सलाम है ये भी ऐन मुमकिन है कि यहां से लेकर के जॉर्डन तक के एरिया के अंदर फैली हुई थी। इसी वजह से ये जो पहाड़ों के अंदर जो मकान बने हुए नजर आते हैं ये पेट्रा की सिविलाइजेशन में भी नजर आते हैं, और यहाँ पर भी नजर आते हैं मदाइन साले में भी। ठीक है, तो हिजर जो है वो मुल्क शाम में मारूफ मकाम है। तो इस तरीके से बात समझ में आती है कि मुल्क शाम तो जॉर्डन के एरिया को कहते हैं, ये तो सरजमीन अरब कहलाती है, ये कोई जॉर्डन को, ये कोई मुल्क मुल्क शाम को थोड़ी, कभी कभी भी इसको मुल्क शाम नहीं कहा गया। बहरहाल लनुबय्यिनन्नहु, आगे पढ़ते हैं कि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु थुम्मा लनकूलन्ना लिवलीहि मा शहिदना महलिका अहलिहि व इन्ना लसादिकून। ठीक है ना, पिछली क्लास में हमने ये सारी तफसील पढ़ी थी कि जो जब उन उन दो बंदों ने जो है ना वो औरतों के कहने के ऊपर औरतों को हासिल करने के लिए ऊंटनी को जो है वो कत्ल कर दिया, तो उसके बाद साल अलैहि सलाम ने इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था कि जी अब 3 दिन में तुम्हारे चेहरों के रंग भी बदलेंगे और उसके बाद फिर तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। तो उस वक्त जो है ना बजाय इसके कि माफी मांग लेते और नादिम होते, शर्मिंदा होते, परेशान होते, ये उल्टा साल अलैहि सलाम के कत्ल के दर पे हो गए, और कत्ल के लिए फिर इन 9 लोगों ने इस तरीके से प्लान बनाया जिसका कि इस आयत के अंदर जिक्र है। ठीक है, कि हम रात के वक्त में जो है ना वो पल पड़ेंगे इनके घर वालों के ऊपर, और इनके घर के ऊपर उनके घर वालों के ऊपर, फिर उसके बाद हम जरूर बिल जरूर जो है ना वो इनके वली से कह देंगे कि हमने तो कुछ नहीं देखा, किसने जो है वो हलाक किया इनके घर वालों को, महलिका आदि को कौन हलाक करने वाला था इनके घर वालों को, हमने तो देखा नहीं। ठीक है, वह इन्ना लसादिकून, और हम तो सच्चे हैं। ठीक है, मतलब ये था कि हम सब मिलकर रात के अंधेरे में उन पर और उनके मुतअल्लिकीन पर छापा मारेंगे, सबको हलाक कर देंगे, फिर उनके खून का दावेदार वारिस तहकीक और तफ्तीश के लिए खड़ा होगा, तो हम ये कह देंगे कि हमने तो फला आदमी को ना मारा, ना मारा, ना मारते किसी को देखा। यानी रात का की तारीकी थी, उस जमाने में कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो होती नहीं थी, ठीक है ना, तो हमने जो है वो देखा ही नहीं कि किसने मारा भाई, किसको मारा, किसने मारा, हमें क्या पता। और हम अपने इस कॉल में इसलिए सच्चे होंगे कि रात के अंधेरे में ये तायीन कि किसने किसको मारा हमें मालूम नहीं होगी, ठीक है ना। यानी कलेक्टिवली तो हमें पता है कि जी हमने मारा, लेकिन एग्जैक्टली किसको किसने मारा ये तो नहीं पता रात की तारीकी की वजह से। तो इस तरह से जो है ना वो हम अपने कौल में छूटे भी नहीं होंगे। इसमें एक बात हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसमें एक बात ये काबिले नजर है कि ये कुफार और उनमें से भी चीदा बदमाश जो फसाद में मारूफ थे, है ना, ये जो नौ लीडर्स थे, ये फसादी लीडर्स थे, ये सारे काम शिर्क कुफर और कत्ल वगारत गरी के कर रहे हैं और कोई फिक्र नहीं इनको। कत्ल वगारत गरी कितना बड़ा यानी जुर्म है, लेकिन उसको इस बात की फिक्र नहीं थी, मगर उनको भी ये फिक्र लाहिक हुई कि हम झूठ ना बोले, ठीक है। यानी पहली फिक्र जो उनको लाहिक हुई वो क्या थी कि हम झूठ ना बोले। क्या मतलब कि हम ऐसे जूमानी बात कर दें कि जो झूठ भी ना हो और उनको पता भी ना चले। जूमानी बात करना, ठीक है ना, जैसे कि सामने जो मेरे जा रहे हैं वो मेरे राहबर हैं, अब सुनने वाला समझ रहा है कि भाई ये रास्ता दिखाने वाले हैं, है ना, नेविगेटर जिसको कहते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला ने इससे मानी क्या मुराद ये थे कि ये मुझे दुनिया और आखिरत दोनों का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन सुनने वाला ये समझ रहा है कि सिर्फ दुनिया का रास्ता दिखाते हैं, तो इसको जू मानी, यानी कई मानों वाली बात कहना कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहा, क्योंकि परवाह थी इस बात की कि भाई मेरे मुंह से झूठ ना निकले, मेरे मुंह से झूठ ना निकले, ठीक है। तो इन लोगों को भी कहते हैं कि एक तफसीर के मुताबिक जो है ना कि इन लोगों को इस बात की परवाह थी कि हमारे मुंह से झूठ ना निकले, ठीक है ना। या दूसरा भी एहतमाल है, या ये कि झूठे करार ना दिए जाएं। यानी क्या मतलब कि लोग हमें झूठा तसव्वुर ना करें, वी आर नॉट परसीव्ड एज लायर्स, वी आर नॉट परसीव्ड एज लायर्स, ठीक है ना, हमें कोई झूठा तसव्वुर ना करे, झूठा करार ना दे। इनको इस बात की परवाह थी, जैसे कि मुशरिकीन मक्का नबी अलैहि सलाम के कितने बड़े दुश्मन थे, है ना। आप सबको वाकया पता होगा कि जब नबी अलैहि सलाम ने नबूवत की दावत का खत कैसरे रोम को भेजा, है ना, तो उसने जो है वो कहा कि भाई यहाँ पर कोई मक्का मुकरमा से आया हुआ है तो उसको लेकर के आओ मेरे पास। तो उस वक्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला जो थे मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन वहां पर जब तजारती काफिले के साथ मौजूद थे तो उनको बुला लिया गया, है ना, और उनके साथ कुछ और साथियों को भी बुला लिया गया जो उनके साथ आए हुए थे मक्का मुकरमा से। तो उसने जो है ना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला को आगे किया कि जरा आगे हो जाओ, ठीक है ना, मेरे करीब आ जाओ और मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो उसने जो सवाल किए अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला ने सच्चे सच्चे जवाब दे दिए, सही सही जवाब दे दिए, ठीक है, बिल्कुल सच सच बोल दिया, जैसे जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको पता था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस बात की का डर ना होता ना कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, है ना, मेरे साथी जो पीछे खड़े हुए हैं वो मुझे झूठा समझेंगे, वो मुझे यानी मेरे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी उनके पास उनके सामने, तो मैं कैसर के सवालों के गलत जवाब दे देता, कैसर के सवालों के जवाब गलत दे देता, झूठ बोल देता, लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी परसीव्ड एज अ लायर बाय माई ओन पीपल, ठीक है, तो इस वजह से मुझे सच बोलना पड़ा, ठीक है। तो ये बात इतनी अहम समझी जाती थी इवन काफिरों के दरमियान, और आज हमारे दरमियान कुछ ऐसा मामला चल पड़ा है कि हम झूठ बोलते हैं और उसको मजाक समझ रहे हो, उसको बहाना का नाम दे करके, उसको बात बदलने का नाम दे करके, और उसको जो है वो अपना हक समझ करके, और उसको जो है वो हत्ता के हक समझने से भी आगे बढ़ करके, उसको जो है वो अकलमंदी समझ करके, जो सच बोल देता है उसको बुद्धू कहते हैं, उसको जो है ना वो बेवकूफ कहते हैं, और जो झूठ बोलता है और जबरदस्त तरीके से लोगों को धोखा देता है उसको अकलमंद समझते हैं, उसको कहते हैं ये बड़ा कामयाब है, ये तो आगे बड़ा आगे जाएगा, बड़ा यानी इसकी जिंदगी जो है ना वो बड़ी अच्छी गुजरेगी। ठीक है, कि इसको जो है ना लोगों को धोखा देना आता है, बेवकूफ बनाना आता है। ठीक है, तो कम से कम हमें इतनी तो फिक्र हो ना कि भाई हमारा नाम जो है वो झूठों में ना लिखा जाए, ना दुनिया में और ना आखिरत में। क्योंकि हदीस मुबारक का क्या से एक मफहूम क्या पता चलता है कि इंसान जब बहुत ज्यादा झूठ बोलता है ना, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका नाम झूठों के दफ्तर में लिख लिया जाता है, कज़ाब। ठीक है, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, काजिब तो होता है ना, जिसने एक दफा झूठ बोल दिया वो काजिब है ना, ये यानी कज़ाब है ये, तो झूठ झूठ ही बोलता रहता है। ठीक तो फरमाते हैं कि इससे अंदाजा लगाइए कि झूठ कैसा बड़ा गुनाह है कि सारे बड़े बड़े जरायम के मुर्तकिब भी अपनी शराफत नफ्स और इज्जत की हिफाजत के लिए झूठ बोलने पर इकदाम ना करते थे। ठीक है, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्रेडिबिलिटी। अब उसकी जो है ना वो दूसरी बातों पर भी एतमाद नहीं रहता लोगों को। तो अब आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके मुआशरे के लोग हैं, वो आपको अब इस काबिल नहीं समझेंगे कि आपके साथ कोई डीलिंग कर सकें, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, आपके साथ जो है वो यानी कोई मैरिटल रिलेशनशिप बना सकें या बिजनेस रिलेशनशिप बना सकें। और सबसे ज्यादा बुरा मामला तो मुआशरती तौर पर घर के अंदर होता है, कि जब औलादें बाप को देखती हैं या माँ को देखती हैं झूठ बोलते हुए, तो फिर माँ बाप की बातों की उनके दिल से जो है वो अहमियत खत्म हो जाती है ना। अब माँ बाप जो है वो उनको कोई अच्छी बात भी कह रहे होंगे, नसीहत कर रहे होंगे, किसी चीज के नुकसान से डरा रहे होंगे, तो वो इस बात को अहमियत नहीं देंगे, भाई सीरियसली नहीं लेंगे ना उस बात को। ठीक है, तो इस वजह से झूठे इंसान को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और उसी तरीके से जैसे मिसाली बाप की क्लास के अंदर पिछले दिनों काफी इसके ऊपर बात हुई है कि बच्चों के ऊपर जो है ना जो बेजा सख्ती और बहुत ज्यादा उनको झड़कना और मारना, या उनको जो है वो काम के रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो यानी बहुत ज्यादा परसू करना ना, कि भाई रिजल्ट्स अच्छे लेकर के आओ, अच्छे ग्रेड्स लेकर के आओ, काम जो बताया गया है उसको बिल्कुल ठीक ठीक करके लेकर के आओ, वरना जो है वो डांट पड़ेगी, वरना जो है वो मार पड़ेगी, और अगर कुछ गलती हो गई, कुछ टूट फूट गया, तो जो है ना वो सख्त किस्म की जो है वो उनके साथ रवैया रखा जाएगा। तो इससे बच्चों के अंदर भी झूठ का तरीका पैदा हो जाता है, क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए आपको कोई माहौल की जरूरत नहीं होती कि जी स्कूल जाएंगे फिर वहां पे झूठ बोलना सीख करके आएंगे। नहीं, झूठ बोलना तो सबसे आसान काम है ना, बस जो हुआ था उसको चेंज करके दूसरे तरीके से बता दो, उसी को झूठ कहते हैं, राइट। तो झूठ के लिए आपको कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। तो अब बच्चों के लिए जब झूठ का रास्ता खुल गया ना, जब उन्होंने झूठ की आदत अपना ली, तो अब इससे क्या होगा, इससे उनके लिए सारे गुनाहों के दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि अब जब भी वो गुनाह करेंगे, जब भी कोई गलत काम करेंगे, उनको पता चल गया है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा, अब्बा की डांट से बच जाऊंगा, अम्मी की मार से बच जाऊंगा, तो भाई इससे अच्छा क्या तरीका है बचने का, बुरा काम करो भी और बच भी जाओ, ठीक है ना। तो अब तो उनके लिए रास्ता खुल गया ना, क्योंकि बचने का रास्ता, बचने का तरीका उनको समझ में आ गया, झूठ बोलना है। ठीक है, तो झूठ की जो जो बुराई है ना, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि झूठ जो है वो कितना दूर तक जाता है, यानी सिर्फ दुनिया में दूर तक नहीं जाता, आखिरत तक ये चीज जाती है। तो ये इसी वजह से यानी ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, एक तो ये अल्लाह ताला का हक है, ठीक है ना, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला का हक बार रहा होता है। अल्लाह ताला ने जैसे दुनिया के अंदर कोई मामला किया, आप कह रहे हैं कि वैसे नहीं किया, है ना। रात को अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, आपने कह दिया कि नहीं बरसी बार बारिश, तो ये अल्लाह ताला ने तो बारिश भेजी थी, आपने कैसे कह दिया कि नहीं भेजी थी। अल्लाह ताला ने किसी शख्स को जो है वो उससे कोई काम करवाया था, आपने कहा नहीं उसने ये काम नहीं किया। तो ये झूठ बोलना ये एक्चुअली बंदों का हक नहीं है, ये हुकूकुल इबाद में से नहीं है, ये हुकूकुल्लाह में से है, और ये एक ऐसा हुकूकुल्लाह है कि जिसकी वजह से जो है ना वो ऐसा नहीं है कि ये नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, हुकूकुल्लाह माफ कर देंगे, ठीक है ना। ये जो हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी है ना झूठ बोलना, ये ऐसा ऐसा गुनाह है कि जिसके के रिपरकशंस जो है ना वो बहुत दूर तक जाते हैं। तो अल्लाह ताला शायद माफ कर दें ना कर दें, हुकूक अल्लाह माफ कर देंगे वगैरह, ये सब तो हमें पता है सारी चीजें, जब हम तो बड़े मजे से कर रहे होते हैं, पर हुकूक अल्लाह के खिलाफ वर्जी है ना, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। तो भाई माफ करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई कंफर्म कोई थोड़ी है, लेकिन जो आपने इसकी वजह से एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया, जैसे कि पानी के अंदर जो आप पत्थर फेंकते हैं ना तो उससे लहरें क्रिएट हो जाती है ना, अब आप उन लहरों को रोक तो नहीं सकते ना, वो तो आपको पत्थर फेंकने से रुकना था, पत्थर तो आपने फेंक दिया, जब फेंक दिया तो अब लहरों को थोड़ी रोक सकते हैं जो जो उस पत्थर की वजह से जनरेट हो चुकी हैं। उसी तरीके से जब इस किस्म के हम गुनाह करते हैं ना तो उनकी वजह से जो इफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं अब उनको जाकर के आप नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो भाई झूठ की जो अजीम जरूरत है, अजीम जो उसका नुकसान है, उसको अगर हम थोड़ा सा समझ लें ना तो शायद हमारे लिए झूठ बोलना मुश्किल हो जाए। इस वक्त झूठ बोलना हमारे लिए इंतहाई आसान काम हुआ, इंतहाई आसान काम, बिना सोचे समझे हम झूठ बोलते हैं, हत्ता के जरूरत के तहत नहीं, हम बिना जरूरत झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा खासा काम झूठ बोले बगैर निकल सकता है, लेकिन हम फिर भी झूठ बोल देते हैं। भाई चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए यार, खामोश हो जाओ, डू समथिंग एल्स, किसी तरीके से बात को बदल दो, या सिचुएशन को जस्ट जस्ट अवॉइड द सिचुएशन, जस्ट स्टे क्वाइट फॉर द सेक ऑफ गॉड, जस्ट स्टे क्वाइट। लेकिन नहीं, हम तो इन मुश्किलात में पढ़ने नहीं चाहते ना यार, खामोश रहने की तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये तो बड़ा मुश्किल काम है जी, खामोश रहना, बोलना तो जरूरी है मुझे, तो अब जाहिर है सच बोलूंगा तो जो है वो मुसीबत में फंस जाऊंगा, तो झूठ बोल दो कोई बात नहीं। ये हमारा एटीट्यूड है और हमारी कौम शायद इसके अंदर सबसे आगे दुनिया के अंदर, जितनी जहानत अल्लाह ताला ने दी है वो सारी की सारी जहानत जो है वो झूठ बोलने के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो झूठ बोलना जब तक नहीं छोड़ेंगे ना तो उस वक्त तक फिर आगे बढ़ नहीं सकते हम ना। बाकी फरमाते हैं कि दूसरी बात इस आयत में ये काबिल गौर है कि जिस शख्स को इन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वली करार दिया है वो तो उन्हीं अहले सालेह में शामिल था। भाई वली तो भाई आपके खानदान का फर्द ही होता है ना, तो खानदान वालों को तो मारने के लिए गए थे, तो उसको कत्ल के इरादे से क्यों छोड़ दिया। जवाब यह है कि मुमकिन है कि वो वली खानदानी एतबार से वली तो हो मगर काफिर हो, काफिरों के साथ मिला हुआ हो, जैसे कि अबू लहब नबी अलैहिस्सलाम का सगा चाचा था लेकिन काफिरों के साथ मिला हुआ था, ये नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बायोलॉजिकली तो बेटा था लेकिन अहल में से शामिल ही नहीं था, वो अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया, हालांकि अहल को जो है वो बचाने का वादा किया था नूह अलैहिस्सलाम से, ठीक है। तो ऐसा मुमकिन है कि ये शख्स भी जो है ना वो यानी आइडियोलॉजिकली अहल में से नहीं था, ठीक है। तो उनके मुतालिकीन के कत्ल के बाद वो उनके खून का दावा अपने नस्बी ताल्लुक की बिना पर करे, जैसे कि अरबों, ये भी तो अरबी लोग थे ना, वहीं पे रहते थे सारे के सारे अरब के एरिया में, तो अरबों के अंदर खानदानी ताल्लुकात तो बड़े इंपॉर्टेंट थे, चाहे बेशक जो है वो यानी आइडियोलॉजिकली हम डिसएग्री करते हो, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो जो क्या नाम है आप सल्लम के करीबी रिश्तेदार क्या कुरैश में से बनू हाशिम, बनू हाशिम के जो काफिर थे वो भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ शेबे बनी तालिब के अंदर चले गए थे, राइट। तो उसी तरीके से खून का दावा अपने नस्बी ताल्लुक की बिना पर करें, और ये भी मुमकिन है कि वो मुसलमान ही हो मगर कोई बड़ा आदमी हो जिसके कत्ल करने से अपनी कौम में इख्तलाफ व इंतशार का खतरा हो, इसलिए उसको छोड़ दिया, वल्लाहु आलम, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, कोई सवाल है किसी को तो पूछ लीजिए। हाँ आगे की आयत हम शुरू कर लेते हैं, अगर सवाल होगा तो आप लिख के पूछ लीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता व अंतुम तुबसिरून, ठीक है। तो इस तरह जब हम पढ़ते हैं आगे की आयत तो साथ साथ तर्जुमा भी उमून कर ही लेते हैं। तो अल्लाह ताला अब जो है ना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करने के बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हैं, है ना, रिपीटेशंस बार बार जिक्र करते हैं इन्हीं चार पांच कौमों का। सूरह आराफ के अंदर तफसील के साथ इनका जिक्र हो चुका है लेकिन फिर यहाँ पे जिक्र, फिर उसके बाद सूरह शुआरा के अंदर जिक्र, फिर और न जाने कितनी जगहों पर अल्लाह ताला ने इन कौमों का जिक्र किया, और ऐसे ही तो नहीं जिक्र किया ना, इसकी वजूहत है, हिकमत है, अल्लाह ताला की फायदा है इसका, इसी वजह से जिक्र किया। तो और लूत यानी आप जो है ना वो लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए। इज़ क़ाला लिक़ौमिही, जब उसने कहा अपनी कौम से अतअतूनल फाहिशता, कि क्या तुम फुहश काम के ऊपर आते हो, फोहश काम की तरफ जाते हो, वह अंतुम तुबसिरून, हालांकि तुम अंधे तो नहीं हो कि इसकी बुराई को तुम समझ ना सकते हो, कितनी नजासत वाला, कितना नजस काम है जिसकी तरफ तुम जा रहे हो, हालांकि तुम्हें नजर आ रहा है कि कितनी बदबूदार किस्म की ये हरकत है तुम्हारी। तुबसिरून का मतलब तुम देखते हो, देखते हैं आपसे मुराद जो है वो यानी समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो, किस किस्म की हरकत कर रहे हो। अइन्नकुम लतअतूना रिजाला, क्या तुम लोग, क्या आ आ जो है वो सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, इन्नकुम बेशक तुम लोग, लतअतूना रिजाला कि तुम लोग जरूर बिल जरूर आदमियों के ऊपर जाते हो, शहवतम मिन दून निसाई यानी शहवत के साथ, ये नहीं कि बस ऐसी जो है वो खेलने के लिए और कूदने के लिए जो है वो आदमियों के साथ कोई कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, नहीं बल्कि शहवत के साथ तुम उनके पास जाते हो औरतों को छोड़ करके। दूना का मतलब बगैर और अलावा, जैसे एक वो अबाया की दुकान है मिडिल ईस्ट के अंदर, बिदून इस्म, नो नेम, विदाउट ए नेम अबाया की दुकान है, उन्होंने कहा चलो और कोई नाम नहीं मिल रहा यही नाम रख लेते हैं बिदून इस्म, ठीक है। बहरहाल तो मिंदून निसाई बल अंतुम कौम दजहलू, बल्कि तुम लोग जो हो ना बिल्कुल ही जाहिल कौम हो, यानी तुम देख भी रहे हो एक चीज की बुराई को लेकिन उसको मानने से तुम इनकार कर रहे हो उसकी बुराई को, और उससे दूर होने से तुम बच नहीं रहे हो, इसका मतलब ये कि तुम बिल्कुल जाहिल लोग हो कि तुम्हें अकल समझ नहीं है। फमा काना जवाब कौमी, बस नहीं था कौम का कोई जवाब, यानी उनके पास कोई जवाब ना बन पड़ा, इल्ला सिवाय इसके के अन कालू के वो कहने लगे, अखरिजू आल लूत मिन करिया, देखो निकाल बाहर करो लूत के लोगों को अपने करिया में से, अपनी बस्ती में से, ठीक है। इन नहुम बेशक वो लोग, उनासुई ये तो कहरूं, बड़े पाकबाज बंदे बनते हैं, बड़े नेक मुतहर बनते हैं, बड़े हमारे यहाँ भी इस किस्म के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़ा क्या पारसा बनते हैं, बड़े पारसा बनते हैं, बड़े पाकबाज बनते हैं, जब किसी को नसीहत करे कोई इंसान इखलास के साथ नसीहत कर रहा है उसके खैर ख्वाही के लिए, है ना, तो वो कहते हैं तुम कौन से, तुम्हारी भी तो माजी ऐसे ही था, तुम भी तो पहले वैसे ही थे, या तुम कौन से हमसे खास हो कोई, है इसी किस्म की जुमले जो है वो उस जमाने में भी कसे जा रहे होते थे। उनास ये इंसुन की भी जमा हो सकती है और इंसान की भी जमा हो सकती है, ठीक है, तो उनास मीनिंग पीपल, या तो ताहरून बड़े ताहिर मुताहिर, ठीक है, पाकबाज। वह अनजय ना हूं, बस हमने निजात दे दी, वह अहलहू हमने निजात दे दी उसको यानी लूत अलैहिस्सलाम को, वह अहलहू और उसके साथ जो जो उनसे मुत्तफिक इंसान थे, ठीक है, चाहे वो मर्द थे चाहे औरतें थी, लेकिन उनकी दावत से इत्तेफाक करने वाले लोग थे, उन पर ईमान लाने वाले लोग थे। इल्ला इमरातहू सिवाय उनकी बीवी के, ठीक है, इमरा औरत को कहते हैं, उसकी बीवी इमरातहू, तो इमरातहू जो थी ये जो थी ना ये यानी घर की फर्द थी, ठीक है, लेकिन अहल में अल्लाह ताला ने इसको शामिल नहीं किया क्योंकि ये जो है वो लूत अलैहिस्सलाम से इत्तेफाक नहीं करती थी। किताबों में मशायख ने लिखा है तफासीर में कि जो बीवी थी ना ये कोई एक्ट नहीं करती थी ये वाला, यानी उस जमाने में जो ये लोग एक्ट किया करते थे ये सिर्फ मर्दों का मर्दों के साथ होता था, औरतों का औरतों के साथ होता ही नहीं था, ये तो आज के दौर की इजाद है, ठीक है, औरतों का औरतों के साथ एक्ट, तो ये जो औरत थी ये गुनाह करती नहीं थी, ये सिर्फ गुनाह वालों के साथ जो है ना वो एग्री करती थी, सिर्फ उनके इस फेल को जो है वो अच्छा समझती थी, बुरा नहीं समझती थी। इस समझने की वजह से, क्या मतलब, सोच के गुनाह की वजह से, जो आप इस फकीर से अक्सर सुनते रहते हैं ना लफ्ज, सोच का गुनाह, अमल का गुनाह नहीं, हाथ पैर का गुनाह नहीं, सोच का गुनाह, तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी सोच का गुनाह करने वाली थी, उसकी सोच गंदी थी, ठीक है, और इस सोच के गंदे होने की वजह से वो भी ना ना बच सकी अल्लाह के अजाब से, ठीक है। तो अब हम जाकर के जो डांस पार्टियां हैं या शराब पार्टियां हैं या इस किस्म के जो गोरों के जो टाइप वे ऑफ लाइफ है या जो भी है ना, जो हमारे यहाँ जो बड़े अच्छे लोग समझे जाते हैं, बड़े कामयाब लोग समझे जाते हैं, हम उन जैसे हरकत कर तो नहीं सकते क्योंकि हमारा एक्सेस नहीं है ऐसी पार्टीज में, हम उस वाले जो 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 क्या कहते हैं हमारे यहाँ कराची में कहते हैं पुल के उस पार, क्लिफ्टन पुल के उस पार, डिफेंस क्लिफ्टन में रहने वाले लोग नहीं है, कमजोर लोग हैं, है ना, वो बड़े सस्ते मैले कस्म के लोग हैं, बर्गर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल में तमन्ना है कि काश के मैं उनके जैसा होता, काश के मैं भी पार्टियों में शामिल हो सकता, काश के मुझे भी इन्विटेशन आती, है ना, फलाने बीच पार्टी की इन्विटेशन चाहे काश मुझे भी आ रही होती, ठीक है ना, जैसे कि स्कूलों कॉलेजों के अंदर कुछ तो होते हैं जो कि उसी ग्रुप के होते हैं, कुछ वो होते हैं जो कि खाली देख रहे होते हैं और तमन्ना कर रहे होते हैं कि काश हम भी उन्हीं में से होते, है ना, जैसे कि कारून जब निकला था तो कारून को देख करके उन लोगों ने क्या कहा था कि क्या हज़ नज़ीम इसके पास है, या लैतना ना मिसला मा ऊतिया कारून, है ना, क्या कितना अच्छा होता कि अगर हमारे पास भी वही सब कुछ होता जो कि कारून को दिया गया, है ना, तो कारून जैसे लोग जो होते हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करना ये भी फिर अजाब का सबब बन जाता है। वो तो उन लोगों का भला हो गया कि नेक लोगों ने उनको समझा दिया और उन्होंने बात यानी चुप करके बैठ गए, और अगले दिन फिर जो है वो उनको नजर भी आ गया कि कारून को जो है जमीन के अंदर धंसा दिया गया, तो उस दिन जो है वो फिर अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे, ठीक है, लेकिन किसको तौबा की का मौका मिलता है किसको नहीं मिलता ये तो हमें नहीं पता ना, तो इस किस्म की तमन्ना रखना जो है ना, ऐसी सोच रखना ये अल्लाह के अजाब का सबब बन जाता है, ठीक है। तो फअंजयना हु अहलहु इल्ला इम्रातहु फकद्दरनाहा मिनल गाबिरीन, तो हमने मुकद्दर कर दिया उसको उसको पीछे रहने वालों में से, ठीक है, उसके लिए यानी अल्लाह ताला की तकदीर में क्या लिखा हुआ कि जी ये भी पीछे रह जाएगी, तो अल्लाह ताला की तकदीर में तो भी सब कुछ ही मौजूद है, इसका खाली हिस्सा कोई थोड़ी मौजूद है, बल्कि किसने क्या करना है किसने क्या नहीं करना अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ मौजूद है। बहरहाल इसके साथ ये हुआ कि ये भी पीछे ही रह गई, वह अम्फरना अलैहिम मतरा, और हमने बारिश बरसाई उनके ऊपर, एक बारिश बरसाना यानी एक ऐसी सिग्निफिकेंट किस्म की बारिश थी जो के पत्थरों वाली बारिश थी, फसा मफरुल मुंदरीन, बस कितना बुरा बरसाव था, कितनी बुरी बारिश थी मुंजरीन की, यानी जिन लोगों को डरा दिया गया था, यानी अंजरा युंजरो इंजारन का मतलब होता है डराना, तो मुंजर वो लोग होते हैं कि जिनको डराया गया था, ठीक है, यानी अल्लाह ताला हुज्जत पूरी करते हैं फिर उसके बाद अजाब आता है, उससे पहले अजाब नहीं आता। अब हुज्जत कैसे पूरी करते हैं किस शख्स के मामले में, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला को पता है, हमें तो पता भी नहीं चलता किस तक कैसे अल्लाह ताला ने पैगाम पहुंचा दिया, हमें क्या पता भाई, ठीक है, अजाब ना हमने देना है ना जो है वो हमने जो है वो सारी दुनिया में पैगाम पहुंचाना है, हमें तो जिधर पैगाम पहुंचाने का हुक्म मिलेगा हम वहां जाकर के पैगाम पहुंचा देंगे, ठीक है ना, लेकिन अजाब चूंकि अल्लाह ने देना है तो अल्लाह ताला इज द वन हु मेक श्योर कि कैसे पैगाम पहुंचाना है, कैसे उस बंदे को अप्रोच करना है, ठीक है, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर कि भी पैगाम तो पहुंचा नहीं था ऐसे ही जो है उसको जहन्नुम में डाल दिया गया, भाई आपको आपसे कौन पूछ रहा है जहन्नुम में डालने के लिए, अल्लाह ताला ने डालना है, आपने को थोड़ी डालना है, ठीक है। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वस्सलामुन अला इबादिही, और सलामती है उसके बंदों के लिए, कौन से बंदे, अल्लदीना, वो जो इस्तफा, कि जिनको कि उसने चुन लिया पसंद कर लिया, किनको उसने पसंद कर लिया, जिन्होंने बंदगी इख्तियार कर ली और अल्लाह के नबियों की बात मान ली, अल्लाह ताला ने उनको पसंद कर लिया चूज कर लिया तो उनके ऊपर सलामती है। अल्लाहु, क्या अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाहु, ठीक है, इसके अंदर दो हमजा हैं, एक तो अल्लाह हमजा से शुरू होता है और उससे पहले एक और मद वाला हमजा है, बल्कि एक और हमजा है, वो हमजा क्या है, इस्तिफहामिया, सवाल करने वाला हमजा, तो इसका तर्जुमा क्या बना, क्या अल्लाह, अल्लाह, क्या अल्लाह, इसी वजह से अगर कोई ये कहे ना अल्लाह अकबर तो बड़ा मसला है उसके साथ, पता नहीं फतवा इसके ऊपर क्या है, लेकिन वो ये कह रहा है क्या अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, ठीक है ना, अब वो किस नियत से ये बात कह रहा है, अगर नाउज बिल्ला इनकार की नियत से कह रहा है तो फिर तो उस बंदे का ईमान ही फिर पता नहीं, मतलब जाहिर नहीं रहेगा, वो मुफ्ती साहब बता सकते हैं, अल्लाहु नहीं कह सकते, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, लेकिन यहां पर अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं क्या अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर, अम्मा युशिकून, उन लोगों जिन चीजों को वो शरीक ठहराते हैं उनसे बेहतर नहीं है, ठीक है, यानी भला अल्लाह बेहतर है या जिन लोगों को, जिन चीजों को वो अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। ठीक है, तर्जुमे के बारे में अगर किसी को कोई सवाल हो या कमेंट हो तो आप बता दीजिएगा। खुलासे तफसीर भी हम शुरू कर लेते हैं कि फरमाते हैं वह लूतन इल्काल अली कौमी ही, और हमने लूत अलैहि सलाम को पैगंबर करके उनकी कौम के पास भेजा था। पैगंबर करके यानी उनको नबुवत से सरफराज किया। पहले तो वो इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ साथ बतौर सहाबी के होते थे, उनके भाई के बेटे भतीजे थे ना इब्राहिम अलैहि सलाम के। तो इब्राहिम अलैहि सलाम जब बाबुल के एरिया से निकले, आग से जिंदा बच जाने के बाद जब निकले तो शाम की तरफ आए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन तक पहुंच गए, फिर शायद वहां पर रुके या नहीं रुके, वहां से कंटिन्यू किया उन्होंने मिस्र की जर्नी। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम जो है ना वो यहीं पर रुक गए शाम के इस एरिया में, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको नबुवत से सरफराज फरमा करके इस बस्ती में या इन बस्तियों में मबूस कर दिया था बतौर नबी के। ये बस्तियां क्या थी? ये सोडोम एंड गोमोरा कहते हैं, या अमूरा इसको लिखते हैं अरबी में, सदूम और अमूरा लिखते हैं। ठीक है, सदूम जो है वो इन बस्तियों का कैपिटल था, और अमूरा जो है वो एक और मेजर सिटी था, और इसके अलावा भी पांच छह और सिटीज भी थे। फिर पूरे के पूरे ना इस एरिया में ये बस्ती फैली हुई थी, जहां पे आजकल ये डेड सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम जो है वो रुक गए, तो अल्लाह ताला ने उनको वहां पर भेजा था, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, यानी इस कौम से जाकर के उन्होंने फरमाया कि तुम ये बेहयाई का काम करते हो, हालांकि तुम समझदार हो, क्या इसकी बुराई नहीं समझते? आगे उस बेहयाई का बयान है, यानी क्या तुम मर्दों के साथ शहवतरानी करते हो औरतों को छोड़कर? इसकी कोई वजह नहीं हो सकती, बल्कि इस मामले में तुम महज जहालत कर दो, यानी सिर्फ तुम्हारी जहालत और जिद और शहवत परस्ती है, और तुमने यानी एक ऐसा काम इजाद किया है, जैसे कि सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा सबककुम बिहा मिन अहद मिन अल आलमीन, कि तुम जो ये काम कर रहे हो ना आलमीन में कभी किसी ने पहले नहीं किया तुमसे। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा फेल शुरू किया था, इसी वजह से इस फेल का जो भी मुर्तकिब होगा दुनिया के अंदर उसका गुनाह जो है वो इन लोगों के सर भी आएगा, क्योंकि दे वर द इन्वेंटर्स ऑफ दिस गुनाह। ठीक है, जैसे कि काबिल को जो है वो सारे कातिलों का गुनाह काबिल के सर के ऊपर भी आएगा, क्योंकि उसने इन्वेंट किया है बेगुनाह इंसान को कत्ल करना। ठीक है, तो बस ये हालत यानी जिद और हठधर्मी असल में जो 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 हालत की असल वजह बनती है। इस तकरीर का उनकी कौम से कोई माकूल जवाब ना बन पड़ा, बजुज इसके कि आपस में कहने लगे कि लूत अलैहिस्सलाम के लोगों को, यानी इन पर ईमान लाने वालों को, मां उनके तुम अपनी बस्ती से निकाल दो, क्योंकि ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। सो जब यहां तक नौबत पहुंच गई तो हमने उस कौम पर अजाब नाजिल किया, और लूत अलैहिस्सलाम को और उनके मुतअल्लिकीन को इस अजाब से बचा लिया, बजुज उनकी बीवी के उसको बवजह ईमान ना लाने के हमने उन्हीं लोगों में तजवीज कर रखा था जो अजाब में रह गए थे। ठीक है, उसके लिए यानी यही फैसला था कि भाई वो मेरे नबी पे ईमान नहीं लाई तो वो भी अजाब में ही जाएगी। और वो अजाब जो उन पर नाजिल हुआ ये था कि हमने उन पर एक नई तरह का मेह बरसाया, मेह मतलब बारिश बरसाई, कि वो पत्थरों की बारिश थी। सो उन लोगों का कैसा बुरा मेह था जो अव्वल अजाब खुदा से डराए गए थे, जिस पर उन्होंने इल्तफात ना किया, उन्होंने उन्होंने तवज्जो नहीं दी अल्लाह के नबी की बात के ऊपर। तो आप बयान तौहीद के लिए बतौर खुतबे के कहिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए सदावार हैं, यानी अल्लाह ताला ही डिजर्व करते हैं सारी तारीफों को, और उसके उन बंदों पर सलाम नाजिल हो जिनको उसने मुंतखब फरमाया है, यानी अंबिया व सुलहा। आगे मजमून हमारी तरफ से बयान कीजिए, वो ये कि लोगों ये बतलाओ कि क्या कमालात और एहसानात में अल्लाह बेहतर है, या वो चीजें बेहतरीन बेहतर हैं कि जिनको उलूहियत में शरीक ठहराते हैं, यानी जाहिर और मुसल्लम है कि अल्लाह ही बेहतर है, बस मुस्तहिक इबादत भी वही होगा। यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने अपना एक मखसूस जो उनका तरीका होता है माशाल्लाह तफसीर बयान करने का, तो सलामुन अला इबादहि लजीन अस्तफा अल्लाह खैरुन अम्मा युशिकून की जो है ना वो ये तफसीर बयान कर दी कि भाई अल्लाह ताला यहाँ पे जो इन अल्फाज को इस्तेमाल फरमा रहे हैं वो दरअसल पढ़ने वालों को और सुनने वालों को झंझोड़ रहे हैं कि भाई तुम क्यों शरीक ठहरा रहे हो चीजों को अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला तो वाहदहू ला शरीक है। ठीक है, क्लास का टाइम अब 1 मिनट रह गया है। अगर किसी को कोई सवाल या फिर कमेंट वगैरह हो आप कर लें, वरना फिर मारूफ मसाइल तो अब शुरू करेंगे तब भी क्लास में फिर मुकम्मल हो सकेगी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जो मामला है वो नहीं है कि ये इस किस्म का गुनाह था, बाकी कौमों के अंदर दूसरे किस्म के गुनाह थे, इनकी कौम के अंदर ये वाला खास जो है वो शहवत की इंतहा से भी आगे बढ़ करके तरतीब बदल दी थी इन्होंने, है ना। मर्द औरत के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, औरत मर्द के लिए बनाई है, लेकिन उन्होंने इस तरतीब को बदल दिया, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब भी जो है वो तरतीब बदल करके, तरतीब उलट करके इनके ऊपर अदाब आया कि इनकी जो पूरी की पूरी बस्तियां थी उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक उंगली अपनी जो है ना वो जमीन के अंदर गाड़ करके, जैसे कि एक चम्मच से जो है वो ऊपर उठा लेते हैं ना किसी चीज को, तो हम बच्चों को अक्सर ये मिसाल देते हैं कि जैसे आपका कस्टर्ड बना हुआ हो ना किसी बोल के अंदर, और कस्टर्ड ऐसा होता है कि ऊपर से तो जरा हार्ड हो जाता है, नीचे से कभी कभी जो है वो उसका पानी छूट जाता है। तो अगर आप एक बड़ा सा जो है वो चम्मच लें, उससे जो है वो ऊपर का जो हार्ड पोर्शन था उसको आप बाहर उठा लें, ठीक है ना, तो नीचे का जो लिक्विड पोर्शन था वो भी ऊपर आ जाता है, और फिर आप चम्मच से उस हार्ड पोर्शन को ऊपर लेकर के जाए और ऊपर ले जाकर के उसको पलट दें। तो अब जो है वो जब आपने पलट दिया तो ऊपर से सारी की सारी चीजें जो है वो नीचे आकर के गिरेंगी, उस लिक्विड पोर्शन के अंदर आकर के गिरेंगे ना, तो वो उस चीज के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी गिरेंगी। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे जब इनकी बस्ती को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलट दिया ना ऊंचा ले जा करके, तो अब उसके मकानात भी नीचे गिरे होंगे, उसके पत्थर भी नीचे गिरे होंगे और बंदे भी नीचे गिरे होंगे। तो बंदे नीचे पहुंच गए, ऊपर से जो है पत्थर गिरे चले जा रहे हैं, गिरे चले जा रहे हैं, गिरे चले जा रहे हैं, और वो जो पूरा एरिया था वो ऐसा लगता है, अल्लाह बेहतर जानता है, कि वही जो है ना अब वो डेड सी बन गया है, ठीक है। वो डेड सी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों की आजमाइश के लिए पता नहीं कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसके अंदर छोड़ दिए हैं कि जिससे क्या पता नहीं स्किन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं और फलाना चीज सॉल्व हो जाती है, तो लोग जाकर के वहां पे लेटे आते हैं डेड सी के अंदर, डूबते भी नहीं है उसके अंदर, इतनी उसकी जो है वो इंटेंसिटी इतनी हाई है कि कोई डूबता भी नहीं है उसके अंदर। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपनी नाराजगी से महफूज फरमाए।